हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अगली सुबह शिविका की आँख किसी के चिल्लाने की आवाज़ से खुली। वो काव्या के कमरे में सो रही थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, इसलिए आवाज़ साफ तो नहीं पर धीमी धीमी सुनाई दे रही थी। इससे उसकी आँख खुल गई। उसने आँखें मलते हुए जम्हाई ली और बिस्तर पर बैठ गई। वो अभी भी नींद में थी, आँखें पूरी तरह नहीं खुली थीं। आँखें बंद किए हुए ही उसने अंगड़ाई ली और इधर उधर हाथ फेरते हुए अपना मोबाइल फ़ोन ढूंढने लगी टाइम देखने के लिए। शिविका ने घड़ी में टाइम देखा, सुबह के 5 बजे थे। टाइम देखकर उसने धीमी आवाज़ में कहा, ये इतनी सुबह सुबह क्या हो गया है? कहीं हर्षिता और ऋषभ फिर से तो लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं? ओ गॉड, मैंने कहा था हर्षिता को सबसे दूर रहने के लिए, फिर भी ये लड़की, लगता है इसे वापस जाने के लिए ही बोलना पड़ेगा। ऐसे रोज़ रोज़ सुबह सुबह मैं तो नहीं झेल पाऊंगी ये सब। ये सब बड़बड़ाती हुई शिविका बिस्तर से नीचे उतरी। उसने अपनी स्लिपर्स पहनी और ज़बरदस्ती अपनी आँखें खोलने की कोशिश करते हुए कमरे से बाहर आई। उसने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया ताकि आवाज़ों से काव्या की नींद ना खुले। शिविका कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ आई। उसने देखा कि नीचे हॉल की लाइट ऑफ है, वहाँ पर अभी भी नाइट लाइट जल रही है। कौन है यहाँ पर? क्यों इतनी तेज़ आवाज़ हो रही है? ऋषभ तुम ही हो ना? और कौन है? हर्ष? शिविका सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोली। शिविका अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही एक नौकर ने वहाँ की लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन करते ही शिविका को सब कुछ साफ साफ नज़र आया। वो अब तक सारी सीढ़ियाँ उतरकर लिविंग हॉल में आ चुकी थी। उसने देखा कि सामने हॉल में ऋषभ आधा लेटा हुआ एक सोफे पर बैठा है। उसके पापा की चेयर पर उसके पापा बैठे हैं। उनके साथ उनकी टेक केयर नर्स भी उनके पीछे खड़ी है और एक नौकर भी, जो शायद तेज़ आवाज़ों की वजह से जाग गया है, हॉल में खड़ा हुआ है। उसने ही लाइट ऑन की है। शिविका बारी बारी उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, क्या हो रहा है इतनी सुबह सुबह? पापा आप यहाँ और ऋषभ तुम इस तरह से क्यों लेटे हो यहाँ पर? अपने रूम में नहीं जा सकते क्या? और बहस किस बात पर कर रहे हैं आप दोनों? कम से कम टाइम तो देखा करिए। ऋषभ उठकर सीधा बैठते हुए बोला, हाँ हाँ आप भी मुझे ही बोल लो दी, एक तो मुझे कोई कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझता है। आपकी एंगेजमेंट हो गई, काव्या की तबीयत खराब हुई, वो हॉस्पिटल में थी, और फिर ये लड़की हर्षिता, आप लोगों ने भी यहाँ पता नहीं कितने महीने रुकने की उसे परमिशन दे दी है, और मुझे कुछ ठीक से पता ही नहीं चलता। सब कुछ मुझे बाद में पता चलता है, जब सब कुछ फाइनल या फिर सॉर्ट आउट हो जाता है, और उसके बाद अब ये पापा के सवाल जवाब, मैं कहीं आ जा भी नहीं सकता। देखो, जब मुझे कोई कुछ नहीं बताता तो फिर मैं भी आप लोगों को फॉर्म करके तो नहीं कहीं आने जाने वाला। ऋषभ की इतनी सारी शिकायतें सुनकर शिविका उल्टा उस पर ही इल्ज़ाम लगाते हुए बोली, अरे तो ये कोई टाइम है ये सब शिकायतें करने का? सुबह भी एक टाइम होता है ये सब बातें करने का। और वैसे भी तुम्हें कोई कब बताया ऋषभ? तुम घर पर होते कब हो? अब कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो इंसान पहले उसे सॉल्व करेगा या फिर पहले तुम्हें बताने के लिए ढूंढे? और तुम्हें बताकर वैसे भी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तुम तो खुद ही किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे रहते हो। ऋषभ ने कड़वाहट से कहा, हाँ हाँ ठीक है दी, आप भी याद दिला लो, और कुछ रह गया हो तो वो भी बोल दो। वैसे भी पापा ने तो कसर छोड़ी थी, वो पूरी कर दो या फिर उनसे ज्यादा ही बोल दो, क्योंकि फिलहाल तो आपकी ही दया पर जिंदा हूँ ना मैं। शिविका अपनी बात क्लियर करते हुए बोली, ये हर बात का गलत मतलब क्यों निकालते हो ऋषभ तुम? मैं बस तुम्हें तुम्हारे अच्छे के लिए समझा रही हूँ, और तुम हो कि उल्टा मुझे ही। लेकिन ऋषभ अब उसकी कोई भी सफाई सुनने के मूड में नहीं लग रहा था। उसने दूसरी तरफ देखते हुए मायूसी से अपना सिर हिलाया। तभी शिविका के पापा पीछे से बोले, रहने दो शिविका, क्यों इस बेवकूफ पर अपना टाइम और एनर्जी खर्च कर रही हो? इसे कुछ भी समझाना बेकार है, क्योंकि ये कुछ भी समझना ही नहीं चाहता, और सबसे ज्यादा तो ये खुद को गलत नहीं मानता और ना ही अपनी गलती एक्सेप्ट करता है। और इंसान तो तब सुधरता है ना, जब वो अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करके उन्हें सुधारने की कोशिश करे, लेकिन ये तो महान है। ऋषभ ने सिर्फ अपनी आँखें घुमाई और कुछ भी नहीं कहा। शिविका अपने पापा को ही मनाते हुए बोली, पापा प्लीज रहने दीजिए बात को और मत पढ़ाइए, पहले ही मैंने भी काफी कुछ सुना दिया है उसे। शिविका के पापा ने नाराज होते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, तू भी मुझे ही चुप रहने के लिए बोल दे, अब बाप हूँ मैं, पैदा किया है लेकिन कुछ बोल नहीं सकता, वो भी भले के लिए। मैंने तो बस इतना ही पूछा था इससे कि इस वक्त कहाँ से आ रहा है, बताओ 4:30 बजे भी कोई घर वापस आता है क्या? बिल्कुल बर्बाद हो गया है ये लड़का, और शिविका इसे बर्बाद करने में ना तेरा ही हाथ है, मैं फिर कहूँगा। उनकी ऐसी बातें सुनकर शिविका को अपने सिर में एक तेज दर्द महसूस हुआ। उसने एक हाथ अपने सिर पर रख लिया, लेकिन उसके पापा ने आगे कुछ नहीं कहा और अपने केयरटेकर नर्स से अपनी व्हीलचेयर कमरे तक पहुँचाने का इशारा किया। उनकी नर्स व्हीलचेयर लेकर उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। शिविका ने भी उन्हें नहीं रोका, क्योंकि वो जानती थी इस वक्त कोई भी बात करना या उन लोगों को समझाना सब बेकार है। इसलिए उनके जाने के बाद उसने सिर्फ ऋषभ की तरफ एक नज़र देखा और कुछ बोलने ही वाली थी, तभी ऋषभ ने कहा, दी, एक फ्रेंड का इमरजेंसी कॉल आया था, उसे थोड़ी हेल्प की ज़रूरत थी, बस इसलिए ही गया था और तभी आने में देर हो गया। कोई पार्टी नहीं कर रहा था मैं आज। उसकी बात सुनकर शिविका ने तसल्ली से अपना सिर हिलाया और फिर उसे समझाते हुए बोली, अरे ऋषभ, लेकिन तुम बताकर भी तो जा सकते थे अगर किसी की हेल्प के लिए ही जा रहे थे तो, और अगर पापा पूछें तो उन्हें सीधे भी तुम ये बात बता सकते हो, फिर वो कम नाराज होते, लेकिन नहीं, तुम तो उल्टा ही जवाब देते हो उन्हें। ऋषभ ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अरे दी, लेकिन वो मेरी सीधी बात पूरी सुनते ही कहाँ हैं, जिस तरह से आपने सुन ली उन्हें तो बस मेरे अंदर ही सारी कमियां और बुराइयां नजर आती हैं। बताओ आखिर कितनी सफाई दूं, मैं भी इंसान हूँ, थक जाता हूँ, अब मेरे पापा होकर वही मुझे नहीं समझते तो मैं और दुनिया से क्या उम्मीद रखूंगा। शिविका ने फिर से कहा, अरे लेकिन मैंने कहा तुम जाने से पहले भी तो बताकर जा सकते हो ना मुझे, क्या फिर पापा को? ऋषभ ने सवाल किया, और आप लोग बताते हो मुझे सब कुछ? शिविका ने थोड़ा सोचते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम घर पर रहोगे और तुमने एक बार में कॉल रिसीव किया तो मैं ज़रूर तुम्हें बताऊंगी, ऐसी कोई भी बात होगी तुम्हारा सजेशन भी लूंगी, लेकिन उसके लिए तुम नशे में नहीं होने चाहिए, ये मेरी शर्त है। ऋषभ ने भी उसकी बात पर सिर हिलाते हुए कहा, ओके डन, बट अपनी बात याद रखना दी, और फिर मैं भी आपको ही बताकर जाऊंगा, क्योंकि पापा से बताने गया तो फिर इसी तरह का माहौल बन जाएगा और मैं नहीं चाहता ये सब रोज रोज। शिविका ने उसे फिर से समझाया, हाँ ठीक है, लेकिन बाकी किसी भी टाइम में नॉर्मल बैठकर पापा से बात करना। देखो ऋषभ, वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम मुझे समझने की कोशिश करोगे तो वो भी जरूर तुम्हें समझेंगे। ऋषभ फिलहाल अपनी बहन से और ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया।
अभी अभी घर में जो कुछ भी हुआ वो शिविका के लिए कोई नई बात तो नहीं थी, लेकिन ऐसे इस वक्त जल्दी कोई तमाशा नहीं होता है, ये पहली बार ही था, इसलिए शिविका गहरी सांस लेते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। तभी उसे काव्या के कमरे से उसके रोने की आवाज आई। वो थोड़े तेज कदमों में दौड़ते हुए सीढ़ियों की तरफ चढ़ी, लेकिन सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंचते हुए लड़खड़ा गई और एकदम से सरकते हुए दो तीन सीढ़ियों नीचे आ गई, लेकिन तभी उसने साइड में बनी हुई रेलिंग को पकड़ लिया। फिर भी उसका पैर मुड़ गया और रेलिंग में भी फंस गया, जिसकी वजह से उसके पैर में मोच आ गई और कुछ चोटें भी। इस वजह से वो तेज आवाज में चिल्लाई, आह मेरा पैर, आह आह। शिविका ने उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठ भी नहीं पाई। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर ऋषभ, जो बस अभी अपने कमरे तक पहुंचा ही था, तुरंत ही वापस भागकर सीढ़ियों की तरफ आया। उसने वहां पर शिविका को गिरा हुआ देखा। वो जल्दी से भागकर आगे आया और उसे उठाते हुए बोला, अरे ये क्या हुआ दी, संभल कर चला करो, ये कैसे इतनी चोट लग गई, आप ठीक तो हो ना, और कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई, उठो। शिविका के चिल्लाने की आवाज सुनकर काव्या भी अपनी आंखें मलते हुए कमरे से बाहर निकल कर आई। मम्मा मम्मा, कहाँ हो आप और क्यों चिल्लाया आपने? उसके पापा और बाकी नौकर भी हॉल में आ गए। ज्योति भी ऊपर आई शिविका को देखने। उसने काव्या को समझाया कि मम्मा को चोट लग गई है और उसे लेकर उसके कमरे में गई, लेकिन ऋषभ शिविका को लेकर उसके कमरे में पहुंचा और फिर उसने तुरंत ही डॉक्टर को फोन किया। इन सब में अब तक हर्षिता भी जाग गई है। एक घंटे बाद डॉक्टर वहां पर आए और उन्होंने शिविका का चेकअप किया, पैर पर बैंडेज कर दिया और एक्सरे करवाने को कहा फ्रैक्चर देखने के लिए। इस बीच डॉक्टर ने शिविका को बिल्कुल भी चलने फिरने और सीढ़ियां उतरने के लिए मना कर दिया। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर ऋषभ को गिल्ट हो रहा था। अपने प्री स्कूल जाने से पहले काव्या अभी शिविका से मिलने आई और उसको देखकर शिविका ने स्माइल किया और कहा वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी, और फिर काव्या को वहां से ज्योति के साथ भेज दिया। कुछ देर बाद हर्षिता भी शिविका से मिलने उसके रूम में आई। हर्षिता ने बहुत ही प्यार और अपनेपन से कहा, ये सब कैसे हो गया दी? कोई बात नहीं, आप यहाँ पर ही रुको, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट ले आऊँगी यहाँ पर और कॉफ़ी या फिर जो भी आपको चाहिए। जब तक मैं घर पर रहूँगी आपके छोटे मोटे काम तो कर दूँगी। शिविका ने उसकी बात पर स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू सो मच हर्षिता, बट मेड है इन सब कामों के लिए और तुम्हें तो वैसे भी अपनी कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी होगी ना, कहाँ तुम इन सब कामों में लग जाओगी। हर्षिता ने उसकी बात का जवाब दिया, नहीं अभी इतनी अर्जेंट तो नहीं है, क्योंकि अभी तो ऑडिशन शुरू होने में भी एक हफ्ता बाकी है, तब तक तो मैं आपकी हेल्प कर ही सकती हूँ ना, मुझे अच्छा लगेगा दी सच में। क्रमशः